नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों को पारित किया। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में टीबी के मामलों में कमी वैश्विक दर की तुलना में दोगुनी से अधिक कमी आई है। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट बिजली सबस्टेशन में भीषण आग लगने के बाद 24 घंटे के लिए बंद। एयर इंडिया के लंदन जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई। भारत ने 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए दावेदारी पेश की और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। सतत भविष्य के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के वास्ते ये दिन मनाया जाता है। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15,92,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया है। लोकसभा में अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ये बात कही और कहा है कि जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तब केवल लगभग 3 करोड़ ग्रामीण घरों के पास ही नल के पानी के कनेक्शन थे। श्री पाटिल ने बताया है कि केंद्र ने पिछले यूपीए सरकार की तुलना में पेयजल और संबंधित क्षेत्रों पर बजट पर 4 गुना वृद्धि की है। इसके बाद सदन ने वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को पारित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस के रॉबर्ट ब्रूस ने आरोप लगाया कि सरकार 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने में विफल रही है। चर्चा में निर्दलीय सांसद उमेश भाई, बाबू भाई पटेल और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत सहित कुछ अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर फिर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करके देश को सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम किया है। श्री त्रिवेदी ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने मणिपुर की सीमाओं से निपटने के लिए संवेदनशीलता से काम किया। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने देश में बढ़ते नशे के खतरे का मुद्दा भी उठाया। डीएमके ने एम षणमुगन ने सुरक्षा कर्मियों में लंबे समय तक काम करने और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने देश में किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत पर किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संबंध में संसद कृषि और चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। सरकार ने कहा है कि भारत इस वर्ष टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में टीबी के मामले में 2015 में प्रति लाख 2037 से घटकर 2023 में 195 प्रति लाख हो गए हैं। ये वैश्विक कमी से दोगुनी से भी अधिक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण देश में टीबी उपचार का दायरा 32% तक बढ़ गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार ने टीबी के मामलों का पता लगाने के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया। भारत ने अमृतसर में पिछले महीने 5 तारीख को विमान से आए प्रत्यर्पित भारतीयों के साथ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किए गए खराब व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये चिंता प्रत्यर्पित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को बेड़ियों से बांधने के मामले में व्यक्त की गई है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इसका उल्लेख किया। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट में एक पावर सबस्टेशन में लगी भीषण आग के बाद 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और 16,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं रही। हीथ्रो एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन की भारत की उपलब्धि की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है। इससे पहले कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि उन्नत प्रौद्योगिकी और कुशल पद्धतियों से न केवल भारत ने अपना उत्पादन बढ़ाया है बल्कि इससे सतत और जिम्मेदार खनन भी सुनिश्चित किया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि आतंकवाद उभरती चुनौतियां बनी हुई है। रक्षा सचिव ने कल नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की भारत की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने सहित क्षेत्र में आतंकवाद से मुकाबला करने की दिशा में भारत के प्रयासों का भी उल्लेख किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुष्कर्म के एक प्रयास के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि इससे गलत मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दुष्कर्म से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कुछ टिप्पणी की थी जिसके कारण लोगों में नाराजगी देखी गई है। कर्नाटक में बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और आरएसएस सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोल ने आज आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3री वार्षिक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। प्रतिनिधि सभा आरएसएस की निर्णय लेने और नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। उद्घाटन के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए आरएसएस के सरसस कार्यवाहक मुकुंद जी ने बताया है कि 3 दिवसीय बैठक में पिछले वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरएसएस मणिपुर के लोगों के साथ काम कर रहा है और उनमें भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करने की मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का संयोजक नियुक्त किया गया है। श्री भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्य प्रमुख गोपाल राय का स्थान लिया है। इस बीच श्री राय का पार्टी के गुजरात इकाई का संयोजक बनाया गया है जबकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर में 41,735 करोड़ रुपए की लागत से 810 किलोमीटर लंबी 47 राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ये बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर सरकार की राजमार्ग विस्तार योजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र में नागपुर शहर में सोमवार की रात 2 समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद नागपुर में 11 क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू में से कल 8 क्षेत्रों में ढील दी गई है जबकि कोतवाली, गणेशपेट और तहसील पुलिस स्टेशन के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू जारी है। वंदे भारत कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अरुणाचल प्रदेश में स्थित हरमोती नाहरलगुन रेल का सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अरुणाचल के रेलवे के लिए एक नई शुरुआत है और हरमोती नाहरलगुन सेक्शन पर सफल इलेक्ट्रिक ट्रायल का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सफल इलेक्ट्रिक ट्रायल से राज्य में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत ने 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की है। भारत ने ऐसा कर वैश्विक खेल आयोजनों में मेजबानी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय वन और भोजन। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय वनों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर बल देता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने राज्य के लोअर सुबनसिरी, पापुम पारे, वेस्ट सियांग, सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिवांग वैली, दिवांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, लोंगडिंग और तिराप जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।